दो ही गाने ऐसे हैं, एक गाना है शैलेंद्र जी का
जी
जिसे आज तक फिल्म इंडस्ट्री का
जी
कोई राइटर लिख नहीं पाया।
अच्छा।
और ट्राई बहुत बार किया
जी,
लेकिन मुझे लगा ये लिखेगा लेकिन गली से निकल गया, लिख नहीं पाया,
टच नहीं कर
पाया, वो हो ही नहीं पाया।
कौन सा
गाना है साहब? एक सवाल तुम करो, एक सवाल मैं करूं, हर सवाल का जवाब ही सवाल हो।
ओहो, ये तो पहेली है,
ये है साहब। और ये पहेली में पहेली, अंतरा मुखड़ा ऐसे चलता चला जाता है, जो जवाब देता है उसी में सवाल होता है, सवाल का ही जवाब होता है। ये बहुत ही मुश्किल शैलेंद्र जी का गाना है, और अगर मैं कभी लिख सका तो ही समझूंगा कि मैं एक सफल गीतकार हूँ।
अगर आप ऐसा बोल रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आप जाने जाते हैं ऑन द स्पॉट गीत लिखने में, आप इसके माहिर खिलाड़ी रहे हैं, तो बड़ी बात है। और ये पूरी होगी तमन्ना आपकी?
बहुत मुश्किल है।
नहीं,
बहुत मुश्किल
हो जाएगा, बड़े लोग ऐसे ही बोलते हैं।
बिल्कुल होगा
जी।
अच्छा, आपने इतने हिट गाने लिखे, कोई आपको ऐसा फैन याद है जिसने कोई अलग सा कमेंट किया हो, अजीब सा किया हो?
हाँ राजेश भाई, एक फैन ने मुझे बहुत बड़ी माँ की गाली दी थी।
माँ की गाली?
हाँ। और वो हुआ यूं कि मेरे कुछ फोड़े निकले हुए थे, तो मैं लुंगी बांधे हुआ था
जी,
और मैंने हिमेश भाई को बोला कि मैं रिकॉर्डिंग में नहीं आ पाऊंगा क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा
है जी।
बोला जी सर, आपके बिना तो रिकॉर्डिंग नहीं होगी, वो दौर कुछ ऐसा ही था।
बिल्कुल।
तो हमने कहा यार ठीक है, तो हमने लुंगी बदल के दूसरी बांध ली, और एक ऑटो पकड़ा साला, वो बाहर मैं रहता था झोपड़पट्टी में, वो गंदगी में से निकलते निकलते फिर खून निकले, उसमें दाग धब्बे फिर आ गए। मैं जब आया तो मैंने एक रिक्शे वाला रिक्शा पकड़ा
जी,
और जैसे ही रिक्शा चला तो गाना बजा, सर की जो सर से धीरे धीरे तेरी चुनरिया।
अच्छा
अच्छा।
मैं खुश हो गया
जी।
थोड़ी देर बाद फिर वही गाना बजा, फिर वही गाना बजा, फिर वही गाना बजा। उन दिनों कैसेट चलता था
जी जी जी।
तो मैंने मस्ती में उसको बोला यार कोई अच्छा सा गाना लगाओ।
अच्छा।
उसने फट से मेरी तरफ लुक दिया और गाना बंद कर दी।
अच्छा।
अब मैं तड़पू कि यार गाना बंद कर दिया। मैंने कहा भाई आपने गाना बंद कर दिया। कहता साहब अच्छा गाना सुनने के लिए तमीज भी होनी चाहिए।
अच्छा।
मैंने कहा तुमको मालूम है गाना किसने लिखा है? बोले हाँ मालूम है, सुधाकर शर्मा ने लिखा है।
अच्छा।
तो मैंने कहा भाई वो सुधाकर शर्मा मैं ही हूँ।
अच्छा।
उसने इतनी तगड़ी लुक दी मेरे को कि एक्सीडेंट भी हो सकता था। हाथ से ऐसे मारकर फिर चला और तेज कर दिया उसने। ना भाई माफ कर दे, ये गाना मेरा ही लिखा हुआ है, सुना दे। उसने नहीं सुनाया। सनी की गली में ऐसे आया
जी,
और मैंने उसको पैसे दिए, उसने ऐसे घुमाया और रोका मेरे पास, और तेरी माँ का जो वो बुरी से बुरी गाली दे सकता था। कहता है साले शकल देखी आईने में, सुधाकर शर्मा बोलता है आप चला।
तो सर ये गाली तो थी, लेकिन सच देखा जाए तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है।
हाँ हाँ,
कि वो आपको मानने को भी तैयार
नहीं, तैयारी नहीं है कि मैं ही वो हूँ।
ये कॉम्प्लीमेंट है, ये जादू है कलम का।
और एक कमेंट्स मेरी माँ का और सुन लीजिए मेरे गानों पे
जी।
हुआ ये कि मैं मेरी माँ के साथ एक फंक्शन में गया
जी,
शादी का फंक्शन था, तो पहला गाना मेरा बजा। मैंने बोला माँ ये गाना मैंने लिखा है।
अच्छा।
मैं बोली बेटा अच्छा है।
हाँ।
फिर दूसरा बजा, मेरे चार गाने बज गए।
अच्छा।
उसने सब खाना पीना छोड़ा, वो बस उसी में थी कि कौन सा गाना तेरा है। ये सब वहां से हम आए और घर पे आए, तो घर पे आए तो मैं बैठा हुआ था, मेरी माँ बोलती बेटा अब तो तेरे गाने भी बजने लगे, अब तो कुछ काम कर ले।
अच्छा। वाह वाह वाह, क्या बात है,
ये काम ही नहीं था।
बुजुर्गों की नजर में क्या बात है, ये एक अलग टाइप का कॉम्प्लीमेंट था।
सुधाकर जी, आपने तीन पीढ़ियों के साथ काम किया है,
चार
पीढ़ियों के साथ काम किया है, तो हर पीढ़ी में क्या बदलाव देखने को मिला आपको टाइम टू टाइम?
देखिए पीढ़ी का बदलाव ऐसा है कि जो पीढ़ी शंकर जयकिशन, नौशाद साहब, एच डी बर्मन, ये काम करते वक्त इस बात का ख्याल रखते थे कि हम कोई ऐसा काम करें कि दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर का फोन आना चाहिए, यार क्या बात है,
क्या बात है।
आपस में ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्स करते थे,
बिल्कुल,
अच्छा या बुरा। तो एक दूसरे को, अगर आपने पहाड़ी में कोई गाना बना दिया और किसी ने सुन लिया, तो वो बोलता था कि साला मैं भी बनाऊंगा, और जान के उसकी गली में गाना बना के उनको सुनाते थे, और वो एक हेल्दी स्पर्धा होती थी, तो उसमें अच्छा बुरा सब चलता रहता था। फिर एक पीढ़ी आई जिन्होंने एक रिदम को हाईलाइट किया
जी,
वो थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल
जी,
जो कुल के रिदम जो है ना, जो उन्होंने ऑर्केस्ट्रा को जो
हैवी किया जी,
वो ये एक पीढ़ी आई
जी।
उसके बाद एक पीढ़ी आई जिसने हुक लाइन वाली एक संस्था चला दी, कि कोई ऐसी लाइन होनी चाहिए सुधाकर जी, बस एकदम कैची
जी।
तो ये उसमें अनु मलिक साहब आ गए
जी,
हदीम श्रवण साहब आ गए
जी,
इन लोगों ने कुछों ने गजलों का रंग हिट कर लिया, किसी ने हुक लाइने ले ली,
जतिन ललित साहब
आ गए
जी।
फिर एक पीढ़ी हिमेश रेशमिया की आई, और हिमेश जी का हमेशा ये था, शायरी को बहुत अच्छा समझते हैं,
बिल्कुल,
अभी तो खुद भी गीत लिख रहे हैं
जी,
तो बहुत अच्छा समझते हैं। तो वो हमेशा ही बोलते थे, सुधाकर जी हमको जो बात कहनी है ना, वो बहुत सरल शब्दों में जो है ना, जटिल नहीं होने चाहिए, सबको समझ में आनी चाहिए, सर की जो सर से धीरे धीरे धीरे
चुनौती,
सबको समझ में आनी चाहिए। और उन्होंने वो जो म्यूजिक गड़बड़ हो रहा था, जो हमारा एकॉस्टिक म्यूजिक बजना बंद हो गया था, हिमेश रेशमिया ने दोबारा शुरू किया।
क्या बात है, बहुत ही शानदार।
आप सोचिए कि ओल्डी चुनरिया में 8-8 शहनाइयां, 20-20 कोरस वाले, सब रिदम भर के उन्होंने दिया, और वापस वो कल्चर आ गया। अब ये जो चौथी पीढ़ी आई है
जी,
ये घरों में काम कर रही है, ये स्टूडियोज ही नहीं जाती है
जी।
जब पहली वो जो लोग थे, जब स्टूडियो जाते थे तो बाहर का एक एटमॉस्फेयर उनकी नजर में आता था, गली में क्या बज रहा है, गाड़ी में क्या बज रहा है, कोई भिखारी क्या गा रहा है, कोई झाड़ू वाला क्या गा रहा है, कोई सब्जी वाला क्या गा रहा है। अब तो आप घर में काम कर रहे हैं एसी में बैठे हुए, बाहर क्या हो रहा है आपको नहीं मालूम है, आप वर्ल्ड में झांक रहे हैं
जी,
कि दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में जो हो रहा है वो इंडिया में नहीं होता, इंडिया में अपना ही चलता है हमेशा। तो वो जो आया तो उसमें क्या हो गया उनको, कि ये लोग रात में काम करने लगे, अब रात में कोई राइटर नहीं है तो खुद ही लिखने लगे, और सब पढ़े लिखे हैं तो उनको लगता है हम भी लिख सकते हैं, तो सबने ऐसा लिखना शुरू किया। अब जो फर्क की बात है, देखिए साज वही है, सब कुछ वही है, एक कहावत आपने सुनी होगी, अच्छे काम में उंगली मत करो,
बिल्कुल सही है,
और जो आज काम हो रहा है वो हो ही उंगली से रहा है।
वाह 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 वाह, अच्छा एग्जांपल,
कहा तो कहते थे उंगली मत करो,
बहुत बढ़िया,
और अभी जो काम हो रहा है वो उंगलियों से ही हो रहा है,
टोटल कंप्यूटराइज हो गया,
कंप्यूटराइज हो गया। तो थोड़ा सा उसमें ये फर्क पड़ गया कि एक मशीन 10 लोगों पे है तो वो एक जैसी तो लगेगी ना, उसमें कितना आप डिफरेंस कर लोगे। सिंगरों को आप लॉन्ग नोट्स में गाने गवाने लगे, क्योंकि सिंगर ऐसे आ गए जिनको पिच करना पड़ता है
जी।
तो अगर आपने मुर्की ले ली तो पिच ही नहीं होगा
जी।
तो आपको स्ट्रेट नोट पे, लॉन्ग नोट्स पे गाओगे तो वो इजी आपका जो है ना
चिपकेगा,
चिप वो गाना आपका सही हो जाएगा,
लेवल सही होगा जी।
तो अब वो स्टाइल जो आ गया, वो स्टाइल कितना चलेगा भाई, हर तरीके का चलना चाहिए ना,
बिल्कुल,
इसलिए सारे गाने एक जैसे लग रहे हैं।
चारों पीढ़ियों का आपने फर्क बताया,
फर्क सिर्फ इतना सा है, बाकी काम सभी कर रहे हैं और सभी का अच्छा काम है।
तो आपको आज के दौर का भी काम अच्छा लगता है, कुछ म्यूजिक कौन सा इन दिनों गाना आपको बहुत अच्छा लगा हो, सिंगर आपका नहीं है?
और देखिए साहब, मैं ऐसा तो किसी के काम को बुरा नहीं कह सकता, लेकिन मैं हमेशा सिंगरों का लिरिक राइटर रहा हूं, चाहे वो जो बड़े थे उन्होंने तो जो भी मेरे लिए किया वो मेरे लिए प्रसाद है, लेकिन उसके बाद वाले जो सिंगर हैं, जैसे शब्बीर कुमार, नितिन मुकेश, अमित कुमार, कुमार शानू, उदित नारायण, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति, मैं जिंदगी भर इनका एहसानमंद रहूंगा कि इन्होंने मेरे गाने गाते वक्त कभी ना मेरी शायरी पे कोई उंगली उठाई और कभी भी
नखरा नहीं दिखा,
मेरे से कोई नखरा नहीं दिखाया, कभी मुझे फोन पे ये नहीं बोला कि मैं ये लूंगा, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगा। तो जो हमने सोचा कि ये गाना हमको किसको गवाना है, हमने उसी सिंगर को गवाया और वो गाने मेरे हिट हुए। बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है मेरे कैरियर में इन सब सिंगरों का जिन्होंने मेरी बात को हमेशा रखा।